रुद्राक्ष ईशानी को डॉक्टर के पास लेकर गया था। लौटते वक्त वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वहां एक लड़की बैठी थी जिसने ईशानी को देखते ही पहचान लिया था। वो लड़की ईशानी और रुद्राक्ष पर नजर रख रही थी। रुद्राक्ष कुछ देर के लिए बाथरूम में गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा ईशानी वहां पर नहीं थी, यहां तक कि पूरा रेस्टोरेंट भी खाली था। रुद्राक्ष दौड़कर बाहर की तरफ गया तो उसे कुछ दूरी पर 3 से 4 गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी। रुद्राक्ष जल्दी से दौड़कर अपनी गाड़ी में गया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, फिर भी उसने काफी तेजी दिखाई और वो ईशानी के लिए उन गाड़ियों का पीछा करने लगा था। मुझे ईशानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ओ गॉड, मैं कितनी गलतियां करते जा रहा हूँ और उन सबकी सजा ईशानी ही भुगत रही है। एक तो इस लड़की ने पता नहीं किन लोगों से पंगा ले रखा है जो इसकी जान तक के दुश्मन बने हुए हैं, रुद्राक्ष गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। उसने तुरंत मोक्ष को कॉल किया। मोक्ष उस वक्त लॉ फर्म में मीटिंग में था, फिर भी उसने रुद्राक्ष का कॉल रिसीव किया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, सामने से रुद्राक्ष की कोल्ड वॉइस आई। एक काम करो, मुझे एक लिस्ट बनाकर भेज दो कि तुम लोगों ने किसका क्या बिगाड़ा है। जब भी इसे बाहर लेकर जाता हूँ, कोई ना कोई इसके पीछे लग जाता है। क्या हुआ, ईशानी ठीक तो है ना, मोक्ष ने झट से पूछा। उसे भी ईशानी की परवाह हो रही थी। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष सार्केस्टिकली बोला, तुम लोगों के काम है क्या ऐसे जो सब कुछ ठीक रह सकता है? किसी ने तुम्हारी सो कॉल्ड असिस्टेंट को किडनैप कर लिया है और मैं उसी के पीछे हूँ। अपने दुश्मनों की एक लिस्ट भेज देना ताकि आगे से उसे बाहर ले जाऊं तो अपने साथ लंबी चौड़ी सिक्योरिटी साथ रखूं। क्या ईशानी किडनैप हो गई और आप इतना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो? भाई, उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप कुछ भी करिए, परेशानी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे सही सलामत लेकर आएंगे आप, मोक्ष ने घबराकर जवाब दिया। ईशानी के किडनैप होने की बात सुनकर वो हड़बड़ा गया था। फिर उसने कुछ पल रुककर शांत लहजे में कहा, अच्छा, जब उसका किडनैप हुआ था तब आसपास कौन था? कोई ऐसा सस्पिशियस पर्सन जो आप पर नजर रख रहा हो? आप मुझे उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताओगे तो मैं आइडिया लगा लूंगा। हाँ, अब यही करने के लिए बाकी रह गया है कि मैं तुम्हें दूसरों के फिजिकल फीचर्स बताऊं। मेरा पूरा ध्यान ईशानी पर था तो मैंने किसी को नहीं देखा। अगर ईशानी को आज कुछ भी हुआ ना मोक्ष, तो मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगा। फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जो करेंगी वही करेंगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया था। वो अभी भी उन गाड़ियों के पीछे ही जा रहा था। किस्मत से वो गाड़ी उसकी आंखों से उझल नहीं हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष को एक उम्मीद थी कि वो ईशानी तक पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ मोक्ष के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और धीरे से कहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ईशानी लंदन में है और किसी ने उसे किडनैप कर लिया है सर। हमें उसे बचाना होगा वरना वो उसे मार देंगे। ठीक है, पर उसे बोलो वापस मुंबई आए। हम इतनी दूर दूसरी कंट्री में उसे ज्यादा दिनों तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से वहां माफियाज आजकल ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वहां उसकी जान को खतरा है। सामने से एक आदमी की सख्त आवाज आई। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया था। वहीं रुद्राक्ष जिन गाड़ियों के पीछे था उनमें से एक गाड़ी ने यू टर्न लिया। रुद्राक्ष उन बाकी गाड़ियों के पीछे जाने के बजाय उसके पीछे मुड़ गया। वो जिस गाड़ी के पीछे था उसे वही लड़की ड्राइव कर रही थी जो रेस्टोरेंट में ईशानी पर नजर रखे हुए थी। गाड़ी की बैक सीट पर ईशानी बेहोश पड़ी हुई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने पीछे ईशानी की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कराते हुए कहा, इतनी जल्दी पकड़ में आ गई? सुना था तुम बहुत स्मार्ट हो, अपना काम काफी स्मार्टली और चालाकी से करती हो, पर आज तुम पकड़ी गई सनशाइन। देखते हैं तुम्हें देने के कौन कितने पैसे देता है मुझे। इट विल बी टू मच फन जब किसी चीज के बजाय तुम्हारी बोली लगेगी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी नजर रियर मिरर पर तरफ गई तो उसने देखा कि उसके पीछे एक गाड़ी थी। उसे देखते हुए वो थोड़ा हैरानी से बोली, मैंने तो सारी गाड़ियों को धोखा दे दिया था, फिर ये गाड़ी मेरे पीछे क्यों आ रही है? कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं उन्हें डबल क्रॉस कर रही हूँ? उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी तो वहीं रुद्राक्ष की गाड़ी की स्पीड भी काफी तेज थी। रुद्राक्ष समझ गया था कि गाड़ी में जो भी था उसे पता चल गया है कि वो उसका पीछा कर रहा है। पता नहीं गाड़ी के अंदर क्या चल रहा होगा। जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई है, मुसीबतें खुद चलकर मेरे पास आने लगी हैं। कहीं राहुल मित्तल ने तो इसे किडनैप नहीं करवाया है, या फिर ये काम शेख का हो सकता है। रुद्राक्ष गाड़ी ड्राइव करते हुए अलग अलग अंदाजे लगा रहा था। आखिर में वो उस गाड़ी के सामने आने में कामयाब हो गया था। मजबूरी में उस लड़की को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। रुद्राक्ष और वो लड़की एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। उस लड़की के हाथ में गन थी और रुद्राक्ष के हाथ में कुछ नहीं। वो उस लड़की के पास आया और सर्द निगाहों से देखते हुए सीधा उसका गला पकड़ दिया था, जबकि उस लड़की ने अपनी गन को रुद्राक्ष के माथे पर पॉइंट किया और ट्रिगर पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी गन पहले से ही लोड थी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर एक बात साफ है कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, सनशाइन के लिए आए हो, लड़की ने रुद्राक्ष की तरफ घूमते हुए देखकर कहा। मैं नहीं जानता ये कौन सनशाइन है या फिर तुम कौन हो। यहाँ मैं किसी और के पीछे नहीं बल्कि अपनी वाइफ के पीछे आया हूँ, और उसे मैं तुम्हें खरोच भी नहीं देने दूंगा, रुद्राक्ष ने सर्द आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर वो लड़की जोर से हंसी और फिर सर हिलाकर कहा, तुम्हारी वाइफ? शादी करने से पहले अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ जाना नहीं था क्या, कि वो कौन है या फिर सिर्फ चेहरा देखकर शादी कर ली? माफिया के दुश्मनों की लिस्ट में शुमार है ये लड़की, जो कब उन्हें धोखा देकर उनकी इंपॉर्टेंट चीज लेकर निकल जाती है उन्हें एहसास भी नहीं होता। ब्लडी थीफ। हाँ तो ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है ना कि तुम सब इतने बेवकूफ हो कि एक मामूली सी लड़की तुम्हें धोखा देकर निकल लेती है। जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ, इसे तो कोई चिल्लाकर बात कर ले तब भी ये घबरा जाती है, और तुम जैसे खुद को चालाक समझने वाले, दुनिया अपने काबू में करने वाले लोगों को एक मामूली सी लड़की ने अपनी उंगली पर नचा रखा है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। वो बातों बातों में उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आया और वो तेज आवाज में बोली, बहुत बातें आ रही हैं तुम्हें, अपनी वाइफ के दम पर इतना उछल रहे हो या माफिया में तुम्हारी जान पहचान है? मैं किसी का नहीं सोचूंगी। इस वक्त तुम मेरी गन के सामने हो और मुझे ट्रिगर दबाने में एक सेकंड भी नहीं लगेगी। अफसोस की बात है ना कि तुम अभी भी बातों में कितना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता, रुद्राक्ष ने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बुरी तरह मोड़ दिया। वो लड़की दर्द से जोर से चिल्लाई। अब गन पॉइंट रुद्राक्ष का सिर नहीं बल्कि उस लड़की की गनपटी थी, जहां रुद्राक्ष ने उसी के हाथों से उस पर गोली चला दी थी। अगले ही पल उस लड़की की लाश वहां गिरी हुई थी और रुद्राक्ष उसे अजीब नजरों से देख रहा था। माफिया में नहीं हूं इसका मतलब ये भी नहीं कि शरीफ हूं। यहां कौन कैसा है मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मुझे सबसे दो कदम आगे रहना होता है, भले ही लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, रुद्राक्ष उसे देखते हुए बोला, और फिर उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला।
रुद्राक्ष ने रुमाल अपने हाथ में पकड़कर गाड़ी का दरवाजा खोला ताकि उसके फिंगरप्रिंट कहीं भी ना आए। उसने ईशानी को केयरफुली गाड़ी से बाहर निकाला और फिर अपनी गाड़ी में लेटा गया। वहां से निकलने से पहले रुद्राक्ष ने अच्छे से चेक कर लिया था कि कहीं ईशानी का गाड़ी में कुछ गिर तो नहीं गया। आसपास से अपने होने के सारे सबूत मिटाने के बाद रुद्राक्ष ईशानी को लेकर घर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ईशानी को होश आया तो वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ईशानी ने आँख खोलकर रुद्राक्ष की तरफ कुछ पल देखा और फिर धीरे से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? उस लड़की ने मुझे बेहोश कर दिया था। वो वेरोनिका थी। वेरोनिका कहाँ है? वो एक सीरियल किलर है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? ईशानी परेशानी में जल्दी से उठी और रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष बोरियत भरे लहजे से सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी चला रहा था। आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर वेरोनिका ने मुझे कैसे छोड़ दिया? वो आसानी से अपने शिकार को जाने नहीं देती और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ईशानी ने रुद्राक्ष से हैरानी से पूछा। कमाल की बात है ना वाइफी, जो औरत है दूसरों को बेदर्दी से मारती है, आज मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे गई और उसे एहसास भी नहीं हुआ, रुद्राक्ष ने भौंहें उठाकर कहा, जिस पर ईशानी चौंकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष की बातों से वो समझ गई थी कि वेरोनिका मर गई है, पर उसे मारने वाला कौन था? उससे किसने मारा होगा? जिसने भी उसे मारा उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया? आपने मुझे कैसे बचाया? ईशानी के दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब देने में रुद्राक्ष का बिल्कुल मूड नहीं था। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, वैसे तो तुम्हारे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अब तुम किसी मजबूरी के चलते भी बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी जान कैसे बची है, उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम ठीक हो यही काफ़ी है। मुझे इस बारे में आगे बात नहीं करनी है ईशानी, और घर पर जाकर किसी को कुछ मत कहना। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन मैं घर वापस जाने के बाद नीचे वाले कमरे में नहीं रहने वाली हूँ, ईशानी ने सीधे सीधे कहा। तुम मेरे फ्लोर पर रहोगी, मेरी आंखों के सामने। अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, रुद्राक्ष ने सख्त लहजे में कहा। ईशानी ने उसकी बात पर हामी भरी और लेट गई। हालांकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वेरोनिका जैसी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ने उसे कैसे छोड़ दिया। उसने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा जो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। ईशानी उसके बारे में जानना चाहती थी, पर चाहकर भी वो नहीं जान पाई थी। ईशानी और रुद्राक्ष वेरोनिका नाम के खतरे से तो निकल चुके थे, लेकिन अब एक नई मुसीबत उनके सिर आ चुकी थी। मोक्ष जिनके लिए काम करता था वहां से ऑर्डर आया था कि ईशानी को वापस मुंबई आना होगा। इसके लिए मोक्ष लंदन के लिए निकल चुका था। मोक्ष लंदन की फ्लाइट ले रहा था और इस वक्त उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसने एक नज़र उन पेपर्स की तरफ देखकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी भाई, जानता हूँ ये करके आपसे दुश्मनी मोड़ ले रहा हूँ, पर फिलहाल हमें ईशानी चाहिए। वैसे भी ईशानी को आपसे आज़ाद करवाना था, तो अभी सही वक्त है।